تو مسیح میں بلائے ہوئے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج پہنچ گئے ہم لوگ کلاس نمبر 10، ایک پرشن کلاس 10، ایک پرشن، وہ پرشن ہے پرمیشور نے برائی کو انومتی کیوں دی، پرمیشور نے برائی کو انومتی کیوں دی؟ یہ پرشن آج ہر ایک من، ہر ایک دل میں ہے. آج اگر ہم نیوز پیپر دیکھیں یا ٹی وی پہ نیوز لگائیں تو ہر طرف کیا دیکھتے ہیں؟ دکھ، کشت، پیڑا، غم، کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو سارا پریوار مر گیا، چھوٹے چھوٹے بچے بنا دوائی کھانے کے مر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بیماریاں، ایڈ، کینسر، ایسی خطرناک بیماریاں، لڑائیاں، سوکا، ایسے دیکھو ایسی سٹی میں بھی لوگ بیٹھے ہیں، سوکڑا جسے بولتے ہیں، دھوکا، انیائے، برائی، قتل، سونامی، بھوچال، اور یہ بنا انگ والے لوگ، اپنگ لوگ، کسی بھی طرف دیکھو دکھ، کشت، پیڑا، غم. تو آپ کا بیٹا بھی اس دن بول رہا تھا ایسا کیوں، ہم تو پرارتھنا کی اس میری دوست کے لیے، وہ تو بہت اچھی لڑکی تھی، کیوں کیوں ہو رہا ہے یہ سب، کیوں مر رہے ہیں یہ لوگ، کیوں پروار کے پروار ختم ہو جاتے ہیں، کیوں دیشوں کے بیچ میں لڑائیاں اور اتنے لوگ مر جاتے ہیں. تھوڑے دن پہلے آرمی کے کچھ بندوں کا سر کاٹ دیا، بھوک سے مر رہے ہیں لوگ، بیماریوں سے مر رہے ہیں لوگ، مرڈر ہو رہے ہیں، ریپ ہو رہے ہیں، غلط 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 غلط. کیوں؟ کیا پرمیشور کو چنتا نہیں ہے؟ کیا وہ ہمیں ان ساری مشکلوں سے نہیں بچا سکتا؟ کیوں پرمیشور چپ چاپ بیٹھا ہوا، کیوں نہیں کچھ بھی کر رہا؟ یہ پرشن بہت سے لوگ کرتے ہیں. وہ سسٹر کے من میں بھی پرشن ہوگا، میرا پتی ہی کیوں. سب کے من میں یہ پرشن ہوتا ہے. آج یہ ہر ایک من کا پرشن. لوگ پرمیشور کو پوجتے تو ہیں لیکن یہ بھی سوچتے ہیں کہ کیسا ہے یہ پرمیشور، یہ دیا کیوں نہیں کرتا پرمیشور. آتا ہے نا من میں، کئی بار آتا ہے. ہم زیادہ ترسوان بٹ جاتے ہیں اور پرمیشور تو ترس ہی نہیں کھا رہا ہے نا. کیوں؟ یہ بہت بڑا پرشن ہے اور جس کا اتر مجھے نہیں لگتا کوئی دے سکتا ہے، لیکن پرمیشور کا وچن ضرور دے سکتا ہے. تو کئی بار ہم دیکھتے ہیں بیچارے جو بچے پیدا ہوا، دو تین گھنٹے بعد میں، تو بہت سے لوگوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی سنتوشٹی پوروک اتر نہیں ڈھونڈ پایا. کسی کو بھی اس چیز کے بارے میں نہیں پتا چلا. کئی لوگوں نے تو یہ بھی سوچنا شروع کر دیا پرمیشور ہے ہی نہیں، اگر ہوتا تو کیا وہ کسی کو چینج نہیں کرتا. کئی لوگ ایسا بھی مانتے ہیں. کیوں نہیں اس کو دیا آتی ہے یہ ہمارے دکھ، کشت، پیڑا، غم دیکھ کے؟ تو کیا ہے اس پرشن کا اتر؟ اگر آپ کسی سمجھدار کے پاس سندیشہ لے کے جاؤ مسیح کے، مسیح کا، تو وہ آپ سے ہزاروں پرشن پوچھے گا، ایسا کیوں بتاؤ. تو ہمارے پاس کیا اتر ہے؟ ये प्रश्न आज ही नहीं है, ये प्रश्न इतिहास में भी था और परमेश्वर के लोगों ने ढूंढने की कोशिश की, नबियों ने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिला। सबसे बाइबल में समझदार इंसान कौन है? नहीं, सबसे ज्यादा बुद्धिमान बाइबल में है सुलेमान।
लेकिन वो तो आप, हमने बाइबल में पढ़ा लिया, सबसे मूर्खी था।
नहीं, ही था मूर्ख, ये था कि उसने उससे गलतियां तो सबने की, लेकिन समझदारी की वो सबसे बड़ी उदाहरण थी, मिसाल। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं।
लेकिन एक मिनट बोल सकता हूँ, लेकिन असल जो सबसे भरोसेमंद इंसान था, सबसे बुद्धिमान इंसान वही है जो परमेश्वर में दृढ़ता से विश्वास करे, और अय्यूब ने किया था। वो इतना बड़ा था, वो मौत के कगार पर था।
अय्यूब ने नहीं, सुनिए, अय्यूब ने बाद में अपने आप को सही भी ठहराया था। उसने बोला, परमेश्वर तू मेरे में कोई गलती ढूंढ के दिखा। उसने परमेश्वर को चैलेंज किया था, वो बाद की बात है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान इंसान बाइबल में प्रभु यीशु मसीह की जुबान से सुलेमान, ठीक है। सुलेमान ने भी इस प्रश्न को ढूंढने की कोशिश की, प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश की। पढ़ लो सबोपदेशक 8:16-17। पढ़िए सबोपदेशक 8:16-17 भजन संहिता के बाद। आठ का 16:17 आप ब्रदर, अभी आपका नेक्स्ट वीक की असाइनमेंट है कि आपने ये सारे चैप्टर याद करने, कौन कहां से है। भजन संहिता के बाद नीति वचन, नीति वचन के बाद 8:16-17।
जब मैंने बुद्धि प्राप्त करने और सब काम देखने के लिए जो पृथ्वी पर किए जाते हैं अपना मन लगाया कि कैसे मनुष्य रात दिन जागते रहते हैं, तब मैंने परमेश्वर का सारा काम देखा जो सूर्य के नीचे किया जाता है, और उसकी था मनुष्य ना पा सकता। चाहे मनुष्य उसकी खोज में कितना भी परिश्रम करे तो भी उसको ना जान पाएगा।
ये बाइबल का सबसे बुद्धिमान इंसान है। इसने भी कोशिश की कि सूर्य के नीचे जो काम होते हैं मैं समझने की कोशिश करूं, लेकिन इसने क्या निचोड़ निकाला के परमेश्वर के कामों को कोई नहीं समझ सकता, जितनी मर्जी मेहनत कर लो, ठीक है। चलो आप अब अय्यूब के बारे में चलते हैं। आपने बोला ना अय्यूब, अय्यूब से भी पूछ लेते हैं। अय्यूब 10:3 पढ़ लो, 10:3। अय्यूब इधर है, इधर 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 भजन संहिता से पहले,
अय्यूब 10:3 है
जी।
क्या मुझे अंधेर करना और दुष्टों की युक्ति को सफल करके अपने हाथों के बनाए हुए को निकम्मा जानना भला लगता है?
परमेश्वर को ये प्रश्न, तुमने ही हमें बनाया और उसे बाद में निकम्मा समझना, उसकी केयर नहीं करनी, तुम्हें अच्छी लगती है क्या? ये अजीब पूछ रहा है। हबकूक देख लो, हबकूक 1:2, ये सब परमेश्वर के भविष्य वक्ता है, ये बात समझ लेना। 1:2,
हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख को तरफ चिल्लाता रहूंगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा?
देखो, ये लोगों का आज करोड़ों मिलियन बिलियन ट्रिलियन लोगों का यही प्रश्न, परमेश्वर बचा ले, परमेश्वर ये कर दे। रो रो के लोग प्रार्थना भी करते हैं क्रिश्चियन लोग, परमेश्वर तुम नहीं सुन सकते, क्या बात है, क्या बात है, क्या हमारे परमेश्वर को सुनता नहीं है क्या? इसीलिए शायद क्रिश्चियन लोग बार बार हालेलुया परमेश्वर दया कर दया कर दया कर दया कर दया कर, जैसे परमेश्वर बह रहा है, परमेश्वर एक बार नहीं सुन रहा है, बह रहा है, बस बोले जाओ बोले। ऐसे ही हमारी प्रार्थना लंबी होती है, एक एक शब्द को हम पता नहीं 50 बार बोलते हैं, तारीख 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 तारीख, यहां से ही निकल रहा है, यहां से नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो ये हबकूक बोल रहा है, दाऊद, दाऊद ही बोलता है परमेश्वर को, पता क्या बोल रहा है, परमेश्वर कभी नहीं सोता, कभी नहीं उंगलाता। पढ़ लो भजन संहिता 121:3, एक सौ इक्कीस का तीन,
वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना उभाएगा,
ऊँगेगा, सोएगा। परमेश्वर तो सोता ना ऊँगता है। और दूसरी तरफ यही दाऊद बोलता है भजन संहिता 44:23, हाँ 43 का 23, पढ़िए
पढ़िए। जाग क्यों सोता है, हमको सदा के लिए
जाग, तू क्यों सोता है, ये कौन बोल रहा है, वही दाऊद जो बोलता है तुम्हारा परमेश्वर कभी ऊँगता नहीं है, खुद ही पगल है, समझ ही नहीं है, ढूंढने की कोशिश की नहीं मिला,
हमको सदा के लिए त्यागना दे,
नहीं मिला, पजल भजन। और यही दाऊद बोलता है भजन संहिता 5:4-5,
5:4-5
जी,
उसके बच्चे सुरक्षा से दूर है और ये फाटक में
नहीं, भजन संहिता 4:5 है ना,
5:4-5
क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं तो दुष्टता से प्रसन्न हो,
अरे तू ऐसा ईश्वर नहीं है जो बुराई से प्रसन्न हो, आगे
बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती,
टिकी नहीं सकती,
घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे।
आजकल आप देख लो किधर भी आपको घमंडी ही मिलेगा, नम्र कम मिलेगा। हाँ,
तुझे सब अनाधिकारियों से घृणा है,
और पसंद कर रही है ये बात, परमेश्वर को ये सब जो पसंद नहीं है वो ही तो धरती पे हो रहा है, इन्होंने कोशिश की ढूंढने की, अरे परमेश्वर तो परमेश्वर ऐसा है लेकिन ये सब क्यों, ये पजल्ड थे, इनको नहीं मिला इस प्रश्न का उत्तर, सो गए। आपको क्या लगता है मिलेगा इस प्रश्न का उत्तर,
परमेश्वर में चलेंगे तभी परमेश्वर,
तो इनमें कोई कमी थी,
कमी तो कुछ लोग सोचते जिसके कारण परमेश्वर नहीं दे सका, हर इंसान में कोई कमी
नहीं, ऐसा नहीं है, दाऊद अय्यूब और दाऊद और ये परमेश्वर की नजर में धर्मी लोग हैं, परमेश्वर की
तो ये भी बोला था पूरी बाइबल में कि एक भी इस दुनिया में धर्मी नहीं,
लेकिन फिर भी कृपा की ना, नूहा पे कृपा की, उसको बचाया, ठीक है ना, लेकिन वो परमेश्वर से डरते थे, अब्राहम सब ये सब जितने भी थे ये उस वक्त परमेश्वर के वफादार थे, जिस वक्त बाइबल भी नहीं थी, हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इनको तो कुछ भी नहीं, इन्होंने जो बोला इन्होंने विश्वास किया,
ये हमारे लिए लागू है।
हाँ, तो ऐसे परमेश्वर जिसका कैरेक्टर है ना वो बुराई से प्रसन्न होता है, ना उसको बुरे अच्छे लगते हैं, घमंडी उसकी नजरों के सामने खड़े नहीं हो सकते, ये सब जब जानते थे और सोचते थे फिर ये सब क्यों हो रहा है। आज भी अगर हम बोले हमारा परमेश्वर ऐसा है तो वो बोलेंगे फिर ये क्यों हो रहा है, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे प्रश्न? ठीक है, क्यों तुम्हारा परमेश्वर कुछ नहीं कर रह सकता, कर रहा? तुम बोलते हो सर्वशक्तिमान, हम बोलते ना प्रार्थना में सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान का पता उससे कोई ऊपर शक्ति नहीं है। और परमेश्वर के बारे में पढ़ लो, उसकी इच्छा का कोई विरोध नहीं कर सकता। यशाया 14:27,
क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है?
जो परमेश्वर ने योजना बना दी है, किसमें इतनी हिम्मत है? हाँ,
उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है?
उसने किसी काम करने के लिए हाथ बढ़ा लिया और कौन रोक सकता है उसे? तो ऐसा परमेश्वर, धर्मी परमेश्वर, प्रेम करने वाला परमेश्वर, सारी शक्ति रखने वाला परमेश्वर, बुराई को क्यों अनुमति दी इस संसार में? इस प्रश्न का उत्तर कौन दे सकता है? ठीक है, तो उस वक्त मैं बताऊं, उस वक्त उनको क्यों समझ नहीं आया? क्योंकि उनके समझने का वक्त नहीं था। परमेश्वर समय से पहले कुछ प्रकट नहीं करता। दानियल को बोल, दूत आया, दानियल को बोला तू लिख, दानियल बोलता है इसका मुझे समझ नहीं आया, तेरा काम बोलता लिखना है, समझना तेरा काम है। समझना तेरे लिए नहीं है, समझना किसी और के लिए है, सिर्फ तेरा काम है लिखना, तू बस लिख। ऐसा है परमेश्वर हमारा। तो ऐसा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं इस संसार में, बुराई को अनुमति क्यों दी? ऐसे परमेश्वर की आराधना करने वाले क्यों मरते हैं? क्यों उनके साथ बुरा होता है, जला दिए जाते हैं? क्यों क्यों नहीं करता ऐसा परमेश्वर कुछ? प्रश्न है ना, इस प्रश्न का उत्तर तो होगा ना कोई। परमेश्वर के पवित्र लोगों ने, नबियों ने ढूंढने की कोशिश की 2007 में, अगस्त 2007, मदर टेरेसा का नाम सुना ना?
yes.
मदर टेरेसा ने कितनी सेवा की, कोड़ी, और कितना अच्छे काम किए। उसने भी डाउट कर दिया परमेश्वर पे, उसके मन में भी प्रश्न आया कि परमेश्वर है भी या नहीं, इसको नहीं समझ आई कि परमेश्वर ने बुराई को अनुमति क्यों दी है और क्यों नहीं कर रहा है परमेश्वर कुछ, नहीं समझ आई। किसी से पूछ लेना, आपको प्रश्न, आप बोल देता हूं ये प्रश्न पूछ लीजिए जाके किसी से, सबसे ज्यादा ज्ञान रखने वाले से पूछ लीजिए, क्यों दी है बुराई अनुमति परमेश्वर ने? आपको ये बोल के टाल देंगे, अरे परमेश्वर के कामों को समझना
हमारे बस का नहीं।
या क्या बोलेंगे, वचन दो धारी तलवार है। ठीक है, लेकिन प्रश्न का आपको घुमा दिया जाएगा, प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाएगा। तो हम ऐसे परमेश्वर के बारे में फिर कैसे सच्चे मन से उसके वफादार हो सकते हैं? तो आशा करते हैं आज हमारे इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो परमेश्वर, इस प्रश्न का उत्तर है सिर्फ परमेश्वर के पास, और परमेश्वर खुद बोलता है। कई बार लोग बोलते हैं ना परमेश्वर का नंबर है 333, यरमिया 33:3 बोलते हैं ना, परमेश्वर बोलता है मुझे पुकार मैं तुम्हें, पढ़िए जरा यरमिया 33:3।
मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा।
बड़ी बड़ी और ऐसी कठिन बातें जो तू नहीं जानता, ये भी आगे लिखा है,
तू अभी नहीं समझता।
जिसे तू अभी नहीं समझता ना, एक बार तू करके तो देख। लेकिन लोगों की क्या आदत हो गई है, भाई बस पास्टर जी आप परमेश्वर से पूछो, ऐसा लिखा टू डायरेक्ट आ मेरे पास, मैं बताऊँ हम आज के। चल वो हमारी नज़र में ठीक है, आप और पास्टर भी आपके जैसा ही है। और पुकारने का मतलब ये नहीं कि चिल्ला चिल्ला के, इधर से पुकार। सुनेगा परमेश्वर, परमेश्वर को ये नहीं स्पीकर से ही सुनता है या ऊंची आवाज में सुनता है, नहीं परमेश्वर बहरा नहीं है, परमेश्वर मन की आवाज से सुनता है। ठीक है, तो हमारा बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको बुलावा दे रहा, आओ प्रश्न लेके आओ। और देख लो बचन में परमेश्वर बोलता है आओ, वाद विवाद भी करते हैं, करो मेरे साथ बहस, मैं दूंगा तुम्हें उत्तर। पढ़ लो यशाया 1:18,
यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे खून के समान श्वेत हो जाएंगे।
आओ बुलाता है, आओ हम वाद विवाद करें। लेकिन दुख की बात यह है कि कितने लोग हैं जो परमेश्वर से पूछते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत सुंदर वायदा दिया, मत्ती 7वें अध्याय में क्या बोला, मांगो
तो दिया जाएगा,
ढूंढो
तो पाओगे,
खटखटाओ
खोला जाएगा।
लेकिन लोग क्या मांगते हैं,
सारी चीजें।
8वें वचन में लिखा है जो मांगता है वो पाएगा, जो खटखटाता है उसे मिलता है। ये बहुत बड़ा वायदा है और जो फेल नहीं होगा, ये आत्मिक वायदा है। लेकिन लोग क्या मांगते हैं, बहुत कम है। कोई मांगता है मुझे नौकरी दे, कोई मांगता मुझे घर दे, कोई मांगता अच्छी लड़की दे, कोई मांगता गाड़ी दे, कोई मांगता लोन दे, कोई मांगता मेरा बाहर का वीजा लग जाए, कोई मांगता मेरी बीमारी चंगी हो जाए। लेकिन कोई भी सही चीज नहीं मांगता। याकूब पता क्या बोलता है, तुम मांगते तो हो लेकिन व्यर्थ। याकूब 4:17, व्यर्थ मतलब जो नाश होने वाली चीज है। याकूब 4:17 पढ़ लो,
इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है।
याकूब 4:4 और 7वां देखिए जरा, 7वां।
अच्छा 7 देखो।
हाँ जी।
अच्छा 7, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचितो लोगों अपने हृदय को पवित्र करो।
तीसरा याकूब 4:3,
तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुराई पूरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो।
भोग विलास मतलब समझते हैं ना,
हाँ।
सुख आराम चैन में, ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो वायदा किया था ना वो आत्मिक वायदा था। ये जो वायदा उन्होंने बताया वो आत्मिक वायदा था। ये शारीरिक और ये चीजों के लिए ना प्रभु क्या बोलते हैं, पढ़ लो मत्ती 6:8।
जी
इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मामले से पहले भी जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है।
अगर तो आप किस पिता के बच्चे हो, आप ही पिता हो, आपको तजुर्बा है, ये तजुर्बा बाप समझ सकता है। आप अपने बेटे से मांगने से पहले ही इसके सामने थी, जब वो बच्चा था, जब बोल नहीं सकता, जब आपको समझा नहीं सकता मुझे ये चाहिए, आप देते? इसको भूख लगी है, हाँ लगी होगी, इसको खिलौना चाहिए, उसने मांगा लेकिन आपने दिया ना, आप भी तो बाप हो। ऐसा है हमारा बाप। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते, कपटियों के जैसे बार बार दोहराते मत जाओ, उससे थोड़ा ही पहले पढ़ लो, 6-7 तक पढ़ लो।
प्रार्थना करते
नहीं, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर।
हाँ।
तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा।
हाँ।
प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक न करो।
हाँ।
क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोले
बकने से जाएगी, बकने से ज्यादा नहीं सुनी जाती, ठीक है, ज्यादा हम वो करें, हल्ला करें, तूफान मचाएं, एक एक बाप को 15-15 बार बोले जिससे हमारी प्रार्थना 2 घंटे लंबी हो जाए। बताऊंगा जब मैं आपको प्रार्थना के बारे में बताऊंगा कि प्रार्थना करने का तरीका क्या है, प्रार्थना कैसे करनी है, परमेश्वर को अप्रोच कैसे करना है प्रार्थना में, प्रभु यीशु कैसे अप्रोच करते थे, प्रभु यीशु कैसे बात करते थे परमेश्वर से। उससे पहले आपको परमेश्वर के बारे में जानना है बहुत कुछ, ठीक है, वो मैं बताऊंगा। इसीलिए मैं आपको कभी कुछ नहीं बोला, जब जब जो अभी आप कर रहे हो करते जाओ, लेकिन जब सुधार का समय आएगा मैं आपको वचन से बताऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है। ये तो सिर्फ मैं आज आपको दिखा रहा हूं कि ये जो हमारी शारीरिक जरूरतें हैं हमें परमेश्वर से मांगने की भी जरूरत नहीं है, उसको पता है इस चीज को क्या चीज की जरूरत है, उसको सिर्फ एक विनती के तौर पर परमेश्वर को बता दो, परमेश्वर मुझे लगता है मुझे इस चीज की जरूरत है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ये मुझे दे दो, बार बार बोलने की जरूरत नहीं, अगर परमेश्वर की इच्छा होगी तो। जैसे उदाहरण के तौर पे ब्रदर, इनका बेटा कल को उनसे मांगे कुछ और इनको लगे कि अभी इसका ये सही समय नहीं है, तो ये लेके देंगे क्या? बोलेंगे जब मैं सही समय पे मैं तुम्हें खुद ब खुद वो दे दूंगा। तो परमेश्वर को अपनी संतानों की चिंता है। तो बात कर हम कुछ और कर रहे हैं, तो बात ये थी कि वो है आत्मिक वायदा, आत्मिक चीजें पूछो परमेश्वर मुहैया करेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने पहली क्लास में पढ़ा है, हर एक प्रश्न का उत्तर कहाँ है? परमेश्वर की किताब में। यशाया 34:16 में पढ़ लो, यशाया 34:16।
यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है।
परमेश्वर की आत्मा से ही इन प्रश्नों को ढूंढा जा सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा इस प्रश्न का उत्तर, जितना मर्जी ढूंढ लो। चाहे मैं आपको बोल देता हूँ 100 बार बाइबल पढ़ लो, अगर फिर भी प्रश्न मिल जाए तो
आंसर नहीं
जब तक उसका आत्मा ना अगुवाई करे। और परमेश्वर की किताब में ढूंढ के पढ़ो, ये है परमेश्वर की किताब, इसमें हर एक प्रश्न का कोई बिना जोड़ा नहीं होगा। बिना जोड़ा का मतलब समझे, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, एक जगह प्रश्न दूसरी जगह उत्तर, एक जगह प्रश्न दूसरी जगह उत्तर। तो वो ढूंढ इसलिए नहीं पाए क्योंकि तब तो बाइबल ही कंप्लीट नहीं हुई थी,
टीवी नहीं उनके टाइम पर, परमेश्वर ने लिखित शुरू की थी, लोगों को बताया लिखा गया,
ठीक है। तो ऐसे पता चलते हैं ऐसी बातें। तो चलो आज हम परमेश्वर की किताब में ढूंढ के पढ़ते हैं क्योंकि उसका सुंदर वायदा है, जो ढूंढेगा वो पाएगा, जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा, जो मांगेगा उसे
दिया।
हम दिल से मांगते हैं परमेश्वर इस प्रश्न का उत्तर, तो आज दो हमें। तो शुरू करते हैं आज की पढ़ाई के विषय के बारे में, सबोपदेशक एक का 13।
सबोपदेशक एक का 13 है ना
जी। एक का 13।
मैंने अपना मन लगाया कि जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसका भेद बुद्धि से सोच सोच कर मालूम करूं। यह बड़े दुख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे रहें।
सबोपदेशक 3:10।
मैंने उस दुख भरे काम को देखा जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया है कि वे उस में लगे रहें।
हिंदी में है लगे रहें, लेकिन इंग्लिश में पता क्या है, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब समझते हैं ना,
तजुर्बा।
ठीक है, तजुर्बा या आप क्या बोलते हो एक्सरसाइज को,
जो हम व्यायाम करते हैं शरीर को मेहनत में डालते हैं,
एक्सरसाइज करते हैं ना, आर्मी में भी एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो ये बड़े कष्ट का काम है जिसको परमेश्वर ने अनुमति दी है ताकि ये उससे क्या करे, तजुर्बा, उसमें लगे रहे, मतलब उससे
प्रैक्टिस,
एक तजुर्बा ले। इसका मतलब क्या है, ये बड़ा कष्ट काम क्या है, ये आज की स्थिति।
अभी इसमें बिजी लिखा हुआ है।
हाँ जी, बिजी है,
बिजनेस।
हाँ, बिजनेस भी एक तरह का काम लगा लो, बिजनेस काम में लगे रहे इसमें। ठीक है, तो आपको याद होगा एक और वचन, रोमिया 8:20, क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि को विनाश के हवाले कर दिया अपनी इच्छा से एक आशा में। याद है वो वचन, रोमिया 8:20-21, 8:20-21। या
क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से अपनी क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वालों की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई,
विनाश के व्यर्थता के अधीन इस आस से की गई के
सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतान की महिमा को स्वतंत्रता।
तो ये परमेश्वर ने योजना बनाई कि मैं मनुष्य जाति को एक बहुत बड़े कष्ट, एक बहुत बड़े दुख में रखूंगा, वो दुख, वो कलेश, वो पीड़ा, वो गम, वो अन्याय, वो धोखा, वो पाप, वो मृत्यु की स्थिति। इसे सुलेमान ने बोला है बहुत बड़ा कष्ट, दुख में रखा है, यही है वो दुख जो आज की हम बुराई की स्थिति देखते हैं, हर तरफ अन्याय मनुष्य जाति में चल रहा है। ये इसलिए छोड़ा ताकि वो उसमें से क्या हासिल करें, तजुर्बा, कुछ तजुर्बा हासिल करने के लिए परमेश्वर ने ये स्थिति छोड़ रखी है। इसका मतलब क्या है, आप एक्सरसाइज करते हैं, इससे क्या होता है आपको,
बॉडी स्ट्रांग होगी,
फायदा होता है ना बॉडी को, क्या होता है। अभी आप सोच रहे हो ये बुराई को अनुमति देके जिसमें मनुष्य जाति एक्सरसाइज कर रही है, इस एक्सरसाइज से मनुष्य जाति को क्या फायदा होने वाला है, सोचने वाली बात है। इस बुराई से हमारा क्या फायदा होने वाला है, ये मनुष्य जाति का क्या फायदा, क्या सीखेगी मनुष्य जाति इससे। ये परमेश्वर ने कोई योजना बनाई, परमेश्वर ने क्या बदला बनाई कि इनको ऐसी कष्ट भरी स्थिति में रखना है जिसमें ये एक्सरसाइज करें, और एक्सरसाइज से तो इंसान को फायदा होता है। अभी कौन सा फायदा होने वाला है ये तो अभी बताना बाकी है। तो परमेश्वर ने इस बुराई को अनुमति दी है एक योजना के तहत, एक प्लान के तहत, एक मकसद के तहत। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को हम पे दया नहीं आती, परमेश्वर चुपचाप बैठा हुआ है, नहीं, ये परमेश्वर ने ही अनुमति दी है। देखो एक्सरसाइज करो एक योजना के तहत, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के बारे में साफ साफ बोलता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैरों की, यशाया 66:1। जी
यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा।
तो लोग इस वचन को आप समझे, पहली बात तो मैं आपसे पूछता हूँ, इस वचन को समझे, आकाश मेरा
सिंहासन
और पृथ्वी मेरे पैरों की, क्या मतलब समझे आप, क्या परमेश्वर पृथ्वी पे पैर रख के बैठा हुआ है, परमेश्वर के पैर रखने की जगह है। तो इसका मतलब जैसे लोग समझते हैं, मैंने बोला ना बाइबल को समझना सीधा ही साधारण भाषा में नहीं है। सॉरी सिस्टर, आज आपके मन में से वो भी निकल जाएगा। ये है चिनात्मिक भाषा, कौन सी, इसको साधारण तरीके से समझने की कोशिश भी नहीं करना। आपको क्या लगता है परमेश्वर इस आकाश पे अपना सिंहासन लगा के बैठे हुए हैं ऐसे, और धरती पे पैर रख के बैठे हुए हैं, या दुश्मनों को, सारे तो दुश्मन है परमेश्वर, दिखाओ दिखाओ कौन परमेश्वर के पैर के नीचे है।
सिंहासन मतलब पैरों की तरह टोपी बनाने का मतलब परमेश्वर बोला कि मैं उनको झुका दूंगा, ऐसा नंबर बना दूंगा, तुमने उससे लड़ाई घर में नहीं करना, उससे बदला नहीं लेना।
ऐसा नहीं है, ये परमेश्वर के पैरों की चौकी है, ये इंसान के पैरों की चौकी नहीं है। परमेश्वर इसका मतलब क्या है वही समझना है, ये है चिन्ह। तो परमेश्वर ने ये वचन बोला कि धरती तो मेरे पैरों की चौकी है। लोग सोचना शुरू कर देते हैं परमेश्वर की चार टांगे हैं, एक कुर्सी रखी हुई है, परमेश्वर बैठा हुआ है और आराम कर रहा है। परमेश्वर जब तक धरती पे पैर नहीं रखेंगे परमेश्वर को आराम नहीं मिलेगा। सॉरी सॉरी, ये वचन का मतलब नहीं है। चौंकी का मतलब पता क्या होता है, चौंकी, चौंकी का एक दूसरा मतलब होता है,
जैसे पुलिस चौकी बोलते हैं।
ओहो, आप तो और ही कहीं पहुंच गए बेटा। चौकी कहाँ होती है, पैरों में, कहाँ होती है, तो इसका मतलब पौलुस बताएगा। देखो ये नए पुराने नियम की बात है, नए नियम में हमें मतलब पता चलेगा। प्रेरितों के काम 22:3,
तीन। मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो क्लिसिया के तर्सुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाया था जैसे तुम आप सब आज लगाए हो।
तो बोलता गमलील के पांव में पढ़ाया गया। थोड़ा समझ आ रहा है अभी? क्या पैरों की चौकी का मतलब पता क्या होता है? सीखने की जगह। क्योंकि गुरु और चेले का रिश्ता समझते हो, गुरु कहां बैठता है और चेला पांव में। गुरु से सीखना है ना, समझते ना? इसीलिए आजकल तो स्कूल में बेंच आ गए, लेकिन हमारे जमाने में तो नीचे बैठा करते थे ना।
सीखने की जगह,
ये चौकी का मतलब है सीखने की जगह, जहाँ सिखाया जाता है। और दूसरे शब्दों में बोल लो स्कूल। क्योंकि ये गमलील में क्या होता था, पढ़ लो प्रेरितों के काम 5:34
परंतु गमलीएल नामक एक फारसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर।
बस बस बस, गमलील में कौन होते थे? फारसी, जो व्यवस्था सिखाते थे, अध्यापक, ठीक है। तो ये भी उधर से ही सीखा था। तो
लेकिन आप बोल रहे हो ये अध्यापक, ये तो गलत शिक्षा देते थे।
वॉट एवर, जो भी है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शब्द के मतलब की,
ठीक
है। वो तो गलत थे, वो हमें मालूम है, लेकिन सिखाते तो थे ना वो।
अच्छा, ये हमारे,
तो ये भी तो उधर से सीखा था, उनके पांव से, ठीक है। तो इसलिए परमेश्वर क्या बोल रहे हैं इस वचन में, जो यशाया 66:1 उसमें बोले, धरती मेरी सिखाने की जगह है, एक स्कूल है जिसमें बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, अर्ध जवान, सब सब कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, स्कूल में जाओगे, एक क्लास है, दो क्लास है, तीन क्लास है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। ऐसे ही इस धरती पे ग्रुप है, हर कोई अपने अपने लेवल पे क्या है, सीख रहा है। तो चलो, इसका मतलब तो पता चल गया, ये धरती जो है परमेश्वर के लिए एक सिखाने की जगह है, एक स्कूल है। तो आप सोचोगे, अगर परमेश्वर ने ये हमें सिखाना ही है, तो इतना भयानक तरीका सिखाने का, कोई आसान तरीका नहीं था? और तरीके भी तो होते हैं ना सिखाने के, सही ना? इतना कष्ट, गम वाला तरीका ही क्या, क्या सिखा रहे हैं परमेश्वर हमें? तो इस प्रश्न का उत्तर है, क्या परमेश्वर ने इंसान को एक मशीन बनाया, रोबोट? रोबोट समझते ना, रोबोट। रोबोट को क्या करोगे? रोबोट में प्रोग्रामिंग है। आप बोलो रोबोट, उसमें फिट कर दो, इधर से जा 10 किलोमीटर, वहां पे सब्जी वाली दुकान है, सब्जी लेके वापस आएगा। रोबोट इस्तेमाल करेगा, सब्जी जाएगा लेके आएगा, दिमाग नहीं लगाएगा, क्योंकि उसमें जो भर दिया वही वो
काम करेगा।
परमेश्वर ने इंसान को मशीन बनाया, चाहता तो बना सकता था परमेश्वर इंसान को, चलो ठीक है तुम ये, तुम्हें ये करना है बस। लेकिन परमेश्वर ने इंसान को क्या दी? आजादी। आजादी, तू कुछ भी करने के लिए। परमेश्वर ने इंसान को मशीन नहीं बनाया, यहां तक उसको इस धरती का राजा भी बनाया, या तू राज कर, तू राजा है, तू अपनी मर्जी से जैसा तुम्हें लगता है वैसा कर। परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप, अपने जैसा बनाया, संपूर्ण, बिना पाप के। पहले इंसान के पास जीवन था, हमारे पास जीवन नहीं है, हमें मरना है। पहला इंसान चाहता तो नहीं मर सकता था, अगर वो चाहता तो
नहीं मर,
लेकिन उसने क्या किया? उसने सुसाइड किया। सुसाइड को क्या बोलते हैं हिंदी में?
आत्महत्या।
सब जानता था, लेकिन जब देखा ये हवा, अरे मैं अब इसके बिना क्या करूंगा, चलो मैं भी तोड़ के आत्महत्या की। परमेश्वर ने इंसान को दी है इच्छा की आजादी, तू फ्री है कुछ भी करने के लिए, ये तुम्हें फैसला करना है। अभी इस इच्छा की आजादी में बहुत बड़ा खतरा भी था, परमेश्वर जानते थे ये खतरा। खतरा क्या, आप जानते हैं इस ब्रह्मांड में दो ताकतें काम करती हैं, वो सब जानते हैं, एक तो अच्छी एक तो बुरी। आपके अंदर भी दोनों ही है, एक तो अच्छी एक तो बुरी। कई बार आपको बहुत दया आती है, कई बार आपको बहुत गुस्सा भी आता है, करती है ना, मैं बात करता हूँ हर एक इंसान में ये करती है दो चीजें हर एक। कई बार मान लो मैं उदाहरण, मुझे ये फोन मिल गया, पहले मैं सोचूंगा यार अगर फोन बहुत ही ज्यादा बढ़िया बहुत महंगा लाइक आईफोन 5 गिरा हुआ है मुझे मिल गया रास्ते में, जिसकी कीमत है कुछ 45,000 से ऊपर और बहुत सुंदर फोन है वो, एक तरफ तो मेरा मन ललचाएगा, परमेश्वर ने कृपा कर दी है वाह वाह मिल गया, दूसरी तरफ मैं बोलूंगा यार मैं उस बंदे को फोन लगाता हूँ आपका फोन गिर गया है ले लो मुझसे आके। लेकिन ज्यादा आपको डोमिनेट कौन करेगा, राखी लेता हूँ, सुनते हैं अच्छी आवाज को, तू चुप कर, ठीक है कोई बात नहीं, परमेश्वर से आज प्रार्थना में माफी मांग लेंगे, माफ कर देगा हमारा परमेश्वर। दो ताकत से काम करती है ना, हमारे सामने कई बार बुरा हो रहा होता हम बोलते हैं इसको रोकें, लेकिन हमें क्या लेना देना, होता है या नहीं होता है। तो दो ब्रह्मांड में ये ताकतें काम करती हैं, अच्छा जीवन अच्छा रास्ता आपको देगा खुशहाली शांति आनंद और अनंत काल का जीवन, और बुरा रास्ता आपको देगा बीमारी मौत दुख कष्ट पीड़ा गम। ये दोनों के फल है, हर एक चीज का फल होता है ना, एक का फल है अच्छा एक का फल है बुरा। अभी परमेश्वर को पता था मैं आदम बनाऊंगा, परमेश्वर को पता था आदम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, परमेश्वर को सब कुछ पता था, ऐसा नहीं था कि परमेश्वर को पता नहीं था। परमेश्वर चाहता तो शैतान ने जब उनको गुमराह करने की कोशिश की उसी वक्त रोक सकता था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया,
परमेश्वर ने फ्री हमको फ्रीडम बना दिया था अपनी इच्छा से,
नहीं परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। क्यों, क्योंकि परमेश्वर आपको सवाल चखाना चाहता था, इंसान को क्या चखाना चाहता था, स्वाद, किस चीज का स्वाद, बुरा और अच्छा, ठीक है बुरा और अच्छा। तो जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, आप मेरे सामने दो डिश लेके आओ, एक तो नमकीन एक तो मीठा, ना मुझे मीठे का स्वाद का पता है ना मुझे नमकीन के स्वाद, तो मैं चॉइस कैसे करूंगा, मैं ये लूं या वो लूं, कैसे मैं कैसे चुनूंगा, कैसे चुनूंगा कैसे, जब तक मुझको पता नहीं कि मीठा खाने से वो मीठा स्वाद बहुत अच्छा लगता है, जब तक मुझको पता नहीं नमकीन खाने से ओ ये भी अच्छा लगता है, जब मुझको उसके स्वाद का ही नहीं पता है तो मैं कैसे चुनूंगा। इसी तरीके से अब इंसान के सामने दो रास्ते हैं, एक बुरा एक अच्छा, उसको नहीं पता इस रास्ते पे चलने से क्या मिलेगा, उसको नहीं पता इस रास्ते पे चलने से क्या मिलेगा, तो क्या कर रहा है, खड़ा ही रहेगा। मुझे नहीं पता दिल्ली जाने से क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता जम्मू जाने से क्या होने वाला है, तो क्या होगा, क्या करूं मैं, क्या करूं। तो परमेश्वर ने यही किया, चलो इंसान को है तो ये कष्ट का गम कष्ट का काम, लेकिन सिखाते हैं। इसीलिए अदन की वाटिका में बोलते हैं उन्होंने कौन सा फल खाया, भले और बुरे के ज्ञान का। अभी बुरे का ज्ञान चल रहा है, बुरा चलो सीखो, ये है स्कूल सीखो, बुरा जितना कर सकते हो कर लो करो, लेकिन इसका नतीजा भी देखो, बुराई से क्या आता है, पाप, पाप से क्या आती है, मृत्यु, मृत्यु क्या? हर रोज की मृत्यु, हर रोज की। हम हर रोज मरते हैं। ये बुढ़ापा क्या होता है? निशानी किस चीज की? मृत्यु की, के हमारा और मृत्यु का फासला जो है क्या हो जाए, हुए जा रहा है। दिन ब दिन हम क्या बोलते हैं, बूढ़े होते जा रहे हैं, मतलब मरने का टाइम नजदीक आता जा रहा है ना। बाल वाइट हो गए, ये बुढ़ापे की निशानी है ना। ठीक है, तो इसका क्या है नतीजा? ये है बुराई का नतीजा, पाप का नतीजा। पाप का नतीजा क्या है? बीमारी। शांति है, अरे ये टेंशन, वो टेंशन, आज टेंशन शब्द हो, अरे मुझे इस चीज की टेंशन है, वो टेंशन है, मैं क्या क्या करूँ, वो हो, मुझे दरबार चलाना है, पैसे इतने आने हैं। ये किसी को, अगर किसी के पास लाख है तो वो बोलता है मेरे पास 10 लाख हो, 10 लाख बोलता है मेरे पास करोड़ हो, करोड़ वाला बोलता है मेरे पास 2 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, किसी को भी संतुष्टि है, शांति है, तो ये है बुराई का नतीजा। लेकिन ये पैसा, ये जो कई लोगों को शांति है अभी टेम्परेरी, लेकिन क्या ये मृत्यु से बचा पाएगी? मृत्यु से बचा पाएगी? जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी कमा लो, जितना मर्जी सेव कर लो, मृत्यु से
नहीं।
तो परमेश्वर ने योजना क्या बनाई? इस इंसान को दोनों चीजों का तजुर्बा देते हैं। आज बुराई का तजुर्बा लो, कल को जब इनका पुनर्थान होगा, हमने देखा ना पिछली क्लासेस में, पुनर्थान होगा और सब जी उठेंगे, फिर इन वो कौन सा संसार होगा? धार्मिकता का संसार। उसमें हर तरफ क्या होगी? अच्छाई। जैसे आज बुराई है, उस वक्त क्या होगी? अच्छाई। तो तब इनको क्या स्वाद चखाया जाएगा? अच्छाई का। देखो अच्छाई पे चलने से परमेश्वर ने आंसू भी पोंछ दिए, बीमारी भी नहीं है, मृत्यु भी खत्म कर दी, सब। जब 1000 साल पूरे होंगे तो वचन क्या बोलता है? शैतान को फिर से छोड़ा जाएगा। अब होगा टेस्ट का फैसला, टेस्ट होगा। अब चुनो क्या चुनना है। तुमने अच्छाई भी देख ली है, बुराई भी तुमने देख ली है। पहली मौत मरे हो बुराई की वजह से, दूसरी मौत मरोगे अपनी इच्छा से, रास्ता चुनने की वजह से। दो ही मृत्यु मरने वाली है, और इंसान के दो ही जन्म है, एक ही जन्म है लेकिन दो बार, मतलब
दो चांस है।
टेस्ट मैच है ना, टेस्ट मैच में बैट्समैन को 2 बार खेलने का मौका मिलता है, हर इंसान को 2 पारियां खेलने का मौका है। आज एक, जैसे वो ब्रदर यूके में मर गया है, वो उठेगा, बुराई का स्वाद चख लिया, अभी अच्छाई का स्वाद भी चख लो, उसके बाद अपना फैसला करो। तुम फैसला करो कि तुम्हें बुराई चुननी है या अच्छाई। अगर अच्छाई का रास्ता चुना, शैतान के पीछे नहीं लगे तो अनंत काल का जीवन, और अगर नहीं तो दूसरी मृत्यु, तुम जीने के लायक नहीं हो। अय्यूब 34:4 ये बात कर लो।
जो कुछ ठीक है हम अपने लिए चुन लें,
जो कुछ ठीक है
हम अपने लिए
चुन लें, हाँ,
जो भला है हम आपस में समझ भूल लें,
हाँ,
जो भला है हम आपस में समझ भूल लें,
हाँ,
क्योंकि अय्यूब ने कहा है मैं निर्दोष हूँ।
बहुत गलत ट्रांसलेशन है हिंदी में, इंग्लिश में पढ़िए आप क्या लिखा है। 4:4
Let us choose what is right. Is right, let us know among ourselves what is good.
हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ऊपर पहले, इसके पहले आओ हम अपने लिए न्याय चुन ले। Let us choose a judgment. Judgment, न्याय चुने, जजमेंट परमेश्वर की नजर में, और ये देख ले कि परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर अच्छे को ही प्यार करता है। मतलब क्या इंसान सीख ले कि सही क्या है और गलत क्या है, और एक चीज सिखाने के लिए परमेश्वर को चाहिए समय, जो आदम से लेके आज तक चल रहा है। इसमें क्या कर रहा है परमेश्वर? परमेश्वर ने पहले दी बुराई को अनुमति अपनी योजना के तहत, इसलिए बोलता परमेश्वर ने क्या किया, सृष्टि को किसके हवाले कर दिया, विनाश के हवाले, विनाश क्या, पाप और मृत्यु, ताकि उसमें से कुछ सीखे। अगर मैं आपसे पूछूं आप ट्रेन से जाना पसंद करोगे या प्लेन से, आपको फायदे का नहीं पता कि प्लेन बहुत जल्दी पहुंचाएगा 2 घंटे में और ट्रेन पहुंचाएगी 2 दिन में, तो आपको कैसे पता चलेगा मैं कौन से फैसला कैसे लेंगे। इसी तरीके से परमेश्वर ने इंसान को आजादी तो दे दी, लेकिन उसको कैसे पता चलेगा ये सही है या ये सही है, इसलिए तजुर्बा जरूरी है ना, टेस्ट करो, टेस्ट। इसीलिए अदन की वाटिका में उस दरख्त का नाम रखा ज्ञान, भले और बुरे के ज्ञान का पेड़, भले और बुरे के ज्ञान का। अभी बुरे के ज्ञान का चल रहा है, फल खाओ टेस्ट करो, भले का भी टेस्ट करोगे, उसके बाद तुम फैसला कर लेना कि क्या होगा, कि कौन सा रास्ता चूज करना है। इंग्लिश में सिस्टर आपकी ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम, ट्रांसलेशन जो सही ट्रांसलेशन है वो ये पढ़िए, क्या दिखाता हूँ, चौंतीस का चार, हमारे लिए न्याय चुन लो, जजमेंट। हाँ, हम समझ लें कि क्या अच्छा है, जजमेंट जी। इसलिए KJV सबसे पुराना और अच्छा अनुवाद है, ठीक है। तो ये सारी जो मनुष्य जाति है जो आज मर रही है, इनको फिर से जीवित किया जाएगा, इस पर आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन ये एक ऐसा चमत्कार होगा जिसके बारे में परमेश्वर का वचन बोल रहा है, जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे मसीह में सब
जिलाए जाएंगे।
और फिर प्रभु यीशु मसीह बोलते इस बात पे चंबा मत करो, वचन पढ़ाए हुए हैं मैंने आपको ये, कि जो कब्रों में है वो क्या होंगे,
जी उठेंगे,
आ जाएंगे, जी उठेंगे, ठीक है। कत्ल करने वाले, बुरे से बुरा काम करने वाले, सब 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 आएंगे। ये साईं बाबा मरा है जो, वो भी आएगा,
अरे गुरु नानक देव
जी सब आएंगे, सब जो इंसान है जिनमें दूतों का वो मरे हुए, जो गिरे हुए दूतों का खून मिक्स है, जो आदम की संतान है वो जरूर आएगी, ठीक है। तो कृष्ण का नहीं मुझे पता कि वो शैतान, वो दूतों की संतान थी या क्या थी, लेकिन जो इंसान जैसे गुरु नानक वगैरह वो तो इंसान थे, आदम की संतान है, वो तो आएंगे। मैं भी शायद मैं अगर अगर वो ऐसा, मुझे उसका पक्का नहीं पता है, वही वो जो इंसान, अगर इंसान से पैदा हुआ है तो फिर तो वो जरूर आएगा,
जेल में था वहाँ,
हाँ,
पति पत्नी
जो भी है, तो
कृष्ण भगवान का
नो कृष्ण भगवान मत बोलिए
कृष्ण का जो बोलते हैं
तो ये सब आएंगे इनको मौका मिलेगा अभी बुरा कर गए ना झूठ बोला दुनिया के साथ चलो अब अच्छा सीख लो तुम्हें मौका दे रहा हूँ सुधरने का सुधर जाओ 100 साल का समय दिया जाएगा नहीं तो दूसरी मौत नहीं सुधरोगे तो दूसरी मौत ऐसे होंगे हमने पढ़ा ना यशाया 26:10 में ऐसे होंगे जो धर्म राज्य में भी धार्मिकता नहीं सीखेंगे फिर उनका क्या इलाज होना चाहिए
उनकी लास्ट मौत है
इनका उनका क्या इलाज फिर वही है परमेश्वर का हमेशा दंड एक ही है पाप की मजदूरी तो इसलिए ऐसा होता है ना आप देख लो एक कत्ल करने वाला जब उसको सजा हो जाती है उम्र कैद की उसको क्या होता है पछतावा ये जो कसाब था कसाब ने भी बाद में कन्फेस किया ना कि मैंने गलत किया तो सारे कैदी जेल में जाने के बाद क्या बोलते हैं अगर मुझे मौका मिल जाए ना तो मौका परमेश्वर देता है ये है कब्र एक बहुत बड़ी जेल है परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हें छोड़ता हूं और तुम्हें मौका देता हूं सुधरने का जाओ और सुधर लो अगर फिर भी नहीं तो फिर क्या बोलो इसका कुछ नहीं होने वाला ये जीने के लायक ही नहीं है तो इसलिए परमेश्वर ये सारे समय के दौरान दो तजुर्बे दे रहा है बुराई और अच्छाई का तजुर्बा जो हमने पढ़ लिया क्योंकि सृष्टि परमेश्वर ने विनाश के हवाले की एक आशा में वो हम जानते हैं अभी अगला प्रश्न है कि कोई आसान तरीका नहीं था सिखाने का सीखने के 4 तरीके होते हैं कितने तरीके
4 तरीके
4 तरीकों के जरिए से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तो क्या क्या है वो है नंबर 1 इंट्यूशन इंग्लिश का शब्द होता है इंट्यूशन इंट्यूशन का मतलब क्या होता है
पढ़ाने वाले
वो ट्यूशन होती है
ये
नहीं इंट्यूशन इंट्यूशन का मतलब पता क्या होता है इंट्यूशन का मतलब होता है सारा ज्ञान रखने वाला मतलब मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत अगर आप में वो गुण है तो सीखने की जरूरत नहीं है मुझे सब कुछ अपने आप ही आता है मैं सब कुछ समझता हूँ मुझे सीखने की जरूरत नहीं है ठीक है तो ये इंट्यूशन सिर्फ एक पे ही लागू होती है किस पे उसके अलावा किसी पे भी नहीं प्रभु यीशु मसीह को भी क्या करना पड़ा सीखना पड़ा आए ना सीखा ना 30 साल तक सीखते रहे यशाया 40:14 में पढ़ लो ये इंट्यूशन के बारे में 40:14
उसने किससे सम्मति ली और किसने उसे समझाकर न्याय का पथ बता दिया और ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग जता दिया है
कौन है ऐसा जो परमेश्वर को सिखा सकता है कोई नहीं परमेश्वर को सब पता है परमेश्वर को आप कुछ भी बोलो परमेश्वर को उसके बारे में ज्ञान है ये होती है इंट्यूशन आजकल ये शब्द बहुत इस्तेमाल होता है टीवी में या लोग बात कर जो अपने आप को बड़े समझदार मेरी इंट्यूशन ने मुझे ये बताया कि ऐसा होने वाला है ऐसा ही हुआ ये इंट्यूशन का गुण मनुष्य जाति के पास नहीं है कोई भी मनुष्य ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास इंट्यूशन का गुण है इंट्यूशन का गुण है क्या मतलब क्या है मुझे सीखने की जरूरत नहीं मुझे सब कुछ आता है और इस धरती पे कोई ऐसा इंसान नहीं जिसे सीखने की जरूरत तो ये इंट्यूशन का तरीका हम पे लागू ही नहीं होता ये सिर्फ परमेश्वर का है परमेश्वर को कोई नहीं सिखा सकता परमेश्वर सब सीखे हुए हैं परमेश्वर को सब आता है सीखे हुए का नहीं सीखने की जरूरत नहीं है सब आता है कोई भी ज्ञान की बात कर लो ये साइंटिस्ट अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं ना ये साइंटिस्ट कुछ भी बोले परमेश्वर सब बता देगा ये साइंटिस्ट बोले साइंटिस्ट बोलते हैं हमने डिस्कवरी की हमने ये सीख सीख के ये डिस्कवरी की कि फोन इधर से करने से उधर आवाज पहुंचती है। परमेश्वर को ये सब सिखाने की जरूरत नहीं, परमेश्वर को ये सब आता है, ठीक है। तो ये तरीका हम पे लागू
नहीं होता,
इंट्यूशन। दूसरा तरीका होता है सीखने का ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है देख देख के सीखना। कैसे?
देख देख,
देख, देख सीखना, ठीक है। जैसे एक नाई है, नाई नाई का काम सीखना है तो उसको क्या करना पड़ा है, अपने उस्ताद को देखना पड़ता है, देख देख सीखते हैं ना, सीख जाते हैं ऐसा करना। और भी बहुत से काम लेबर में देखते हैं, सीख सीख के
कोई भी काम देख देख के
और देख देख के सीख जाते हैं। लेकिन ये देख देख के सीखने वाला तरीका अच्छे नतीजे नहीं लेके आ सकता, सबसे अच्छा नतीजा लेके आ सकता नहीं। कैसे? जैसे एक बीड़ी सिगरेट पीने वाला, दारू पीने वाला, जुआ खेलने वाला, बुरे शब्द इस्तेमाल करने वाला, ये सब चीजें आज बच्चे देखते हैं, देखते हैं, लेकिन देखते हैं कि इसका नतीजा भी क्या है। एक बीड़ी सिगरेट पीने वाला कैंसर से मर रहा है, फिर भी क्या बोलते हैं? तो ये बढ़िया नतीजा नहीं ले आके आ सकता। तो इस ये देख देख के सीखने वाला तरीका पता कौन किसके लिए लागू होता है? दूध। दूध हमें देख देख सीख रहे हैं, इसलिए बोलते हैं धरती क्या है, एक स्टेज है और हम सब क्या है उस पे, हम सब हैं एक्टर। किन के लिए? दूतों के लिए। पहला कुरिन्थियों 4:9, पहला कुरिन्थियों 4:9,
मेरी समझ में परमेश्वर ने हम दुनिया को सबके पास उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और दूतों और मनुष्यों के लिए तमाशा ठहरे हैं।
स्वर्ग दूतों के लिए क्या? दूत हमें, क्योंकि दूतों को धरती पे परमेश्वर ने तजुर्बा ये स्कूल में एडमिशन नहीं दी, दूत कहाँ है? स्वर्ग में। तो स्वर्ग से सीख रहे हैं इंसान, इंसान बुरे काम कर रहा है उसका नतीजा ये है, सीख रहे हैं देख देख। तो मनुष्य नहीं सीख सकता देख देख, क्योंकि मनुष्य की जाति कुछ और है। तो ये देख देख के सीखने वाला तरीका भी अच्छा नतीजा नहीं लेके आ सकता। तीसरा तरीका होता है सीखने का इंफॉर्मेशन, यानी सूचना। इंफॉर्मेशन, परमेश्वर ने इंसान को आदम को सूचना दी, इंफॉर्मेशन दी। आदम की वाटिका में क्या बोला प्रभु? क्या बोला? उस पेड़ को मत खा, फल को मत खाना, क्या हो? लेकिन आदम ने माना। तो ये भी अच्छा तरीका नहीं है ना सिखाने का। शराब पे लिखा होता है बोतल पे, ड्रिंकिंग अल्कोहल इज डेंजरस टू हेल्थ, शराब पीनी सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन कोई उस इंफॉर्मेशन की चिंता करता है? तो ये सूचना वाला तरीका भी
गलत है,
मतलब अच्छा नतीजा नहीं लेके आ सकता। तो चौथा तरीका होता है तजुर्बा। सबसे बेस्ट तरीका सिखाने का क्या?
तजुर्बा,
एक्सपीरियंस। सबसे चौथा तरीका क्या है? एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस ही है बेस्ट तरीका, बेस्ट तरीका। इब्रानी 12:11, इब्रानी हो 12:11,
जी
वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है।
देखो हर प्रकार की ताड़ना तो दुख की लगती है, लेकिन
तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है।
बोलता है ना, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, तजुर्बा ही सबसे बढ़िया अध्यापक है। ये जो हमारे, आपको पता है ना, 9000 स्वाद है हमारी जुबान पे।
अच्छा।
इस जुबान पे इधर कुछ है, इधर कुछ है, इधर कुछ है। इस पार्ट को नमकीन अच्छा लगता है, उस पार्ट को मीठा अच्छा लगता है। 9000 टेस्ट बड्स बोलते हैं इसको, वो खाने से डेवलप होती है खा खा के। तो इसी तरीके से ये तजुर्बा, जब परमेश्वर ने बोला मैं बुराई को अनुमति देता हूँ, इससे ये तजुर्बा देखेंगे, इसका नतीजा देखेंगे कि मेरे शरीर पे कैसी कैसी भयानक बीमारियां आ रही हैं, मेरे मन पे हमेशा कष्ट है, मतलब कि शांति है ही नहीं। शांति चाहे समाज में चले जाओ, चाहे किसी परिवार में चले जाओ, चाहे अपने जीवन में देख लो, शरीर में देख लो, कष्ट, गम, पीड़ा, दुख। एक समझदार बाप पता क्या करेगा, बच्चे होते ना, बच्चों को रंगदार चीजें बहुत पसंद होती हैं, इसलिए कई बार आग के नजदीक बहुत जाना पसंद करते हैं बच्चे, भागते भागते चले जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है ये बड़ी अट्रैक्टिव चीज है, अरे बड़े कलर है इसमें, बहुत अच्छी है, लगता है ना। एक समझदार बाप क्या करेगा, एक समझदार बाप उस बच्चे को लेगा और आग के इतना नजदीक लेके जाएगा कि बच्चे को सेक भी आए और इतना दूर रखेगा कि वो जल भी ना
जाए,
ताकि उसको समझ आ जाए कि ये नजदीक जाने की चीज
क्या हानि हो सकती है।
यस, तो ऐसा है हमारा परमेश्वर, वो बहुत समझदार है, उसने सबसे बढ़िया तरीका चुना हमें सिखाने के लिए, तजुर्बा।
बुराई में डाल दिया,
चलो तजुर्बा लो, तजुर्बा लो और उसका स्वाद चखो, फिर पता चल जाएगा कि स्वाद चखने से क्या होगा, क्या नतीजा। परमेश्वर ने ही ये योजना बनाई और परमेश्वर ने ही योजना बनाई, चलो ठीक है ये मर गए, अभी इनको मृत्यु से छुड़ाना भी है, ताकि इनको भले का भी तो ज्ञान देना है ना। तो होश्य 13:14 पढ़ लो।
तेरह चौदह मैं आपको अधोलोक के बस से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुड़ा दूंगा, छुटकारा दूंगा।
मृत्यु से छुटकारा, अगर परमेश्वर ने अनुमति दी मृत्यु को, तो छुटकारा भी कौन करवा रहा है?
परमेश्वर
ने जगत को ऐसा प्रेम किया कि इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि परमेश्वर का मेन मकसद पता क्या है, वो मकसद पढ़ लो, यशाया 13:12।
मैं मनुष्य को कुंदन से और आदमी को उपीर के सीन से भी अधिक महंगा महंगा करूंगा।
कुंदन सोना, एक शब्द काट गया, कुंदन सोना।
अच्छा, कुंदन को क्यों बोलते सोना? कुंदन को सोना बोलते,
अभी मुझे हिंदी
नहीं है,
इंग्लिश में लिखा है फाइन गोल्ड।
कुंदन से और आदमी को उपीरा के सोने से, उपीरा के सोने
13
उपीरा के सोने से भी अधिक महंगा करूंगा।
उपीर सोना बहुत कॉस्टली वो है, उससे भी सुंदर करूंगा मैं किसको, मनुष्य को, मनुष्य को। अभी सोने को आपको पता है मैम भट्टी से निकलना पड़ता है, आग की भट्टी से निकलना पड़ता है। तो इसका मतलब है मनुष्य का कैरेक्टर, मैं मनुष्य को एक बहुत महान कैरेक्टर बनाऊंगा, बहुत बड़े स्वभाव वाला इंसान बनाऊंगा। और यशाया 66:24, और ये परमेश्वर करेगा क्योंकि परमेश्वर का मकसद है, क्योंकि बोलते हैं परमेश्वर ने जो योजना बनाई उसको कौन टाल सकता है।
66:15-24
जी।
तब वे निकलकर उन लोगों के शवों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी ना मरेंगे, उनकी आग कभी ना बुझेगी और सारे मनुष्यों को उनसे अत्यंत करना होगी।
तो ये वो है जो नहीं सीखेंगे, नहीं सीखेंगे तो ये कीड़ा ना मरेगा। ये चिनात्मक भाषा है, ये मैं आपको नरक की क्लास में बताऊंगा इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो सारी मनुष्य जाति अपनी इच्छा से पाप को नफरत करेगी और धार्मिकता को प्रेम, यही है परमेश्वर की योजना। और ये धरती जो परमेश्वर के पैरों की चौकी है ना, इसके बारे में पढ़ लो यशाया 60:13 क्या बोलता है। 60:13 ये धरती का फ्यूचर देख लो।
लवालोन का अभयारण्य अर्थात सरोवर और देवदार और चीड़ के पेड़ एक साथ तेरे पास आएंगे कि मेरे पवित्र स्थान को सुशोभित करें और मैं अपने चरणों के स्थान को महिमा दूंगा।
समझे, चरणों का स्थान धरती, इसको मैं क्या दूंगा, मतलब ये है फ्यूचर धरती का, ये इसमें होगी खुशहाली, इसमें होगी खुशी, इसमें होगी शांति। क्योंकि यशाया 14:7 क्या बोलता है, यशाया 14:7
अब सारी पृथ्वी को विश्राम मिला है, चैन से है।
अब मिला है चैन, अब मिली है धरती को क्या, चैन, और वो ऊंचे स्वर से गाएंगे। ये धरती पे खुशहाली की निशानी, ये है परमेश्वर की योजना। यशाया 35:10
यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे और उनके सर पर सदा का आनंद होगा।
सदा का आनंद खत्म होने वाला नहीं है।
वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा।
ये सब जाता रहेगा, ये नहीं रहेगा। प्रकाशित वाक्य 21:4 में क्या बोलता है, ना मृत्यु ना दुख ना रोना ना बीमारी, सब चीजें जाती रहेंगी, ये नहीं रहेंगी। ये सब चीजों का मतलब क्या है, ये बुराई, ये बीमारी, ये दुख, ये आंसू, ये मृत्यु, ये बुराई को अनुमति का समय पूरा हो जाएगा और बढ़ती क्या हो जाएगी, वाह, इतना आनंद, इतनी खुशी, इतनी खुशहाली धरती पे कभी नहीं हुई थी। परमेश्वर को सचमुच बोलेंगे, वाह परमेश्वर, क्या योजना बनाई तुमने, सचमुच तू है सच्चा परमेश्वर। ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है, इंसान नहीं। पढ़ लो यकूब अय्यूब 14:4 जी।
अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है,
अब क्या है, सब अशुद्ध, इसको शुद्ध कौन बना सकता है, आगे पढ़ लो,
कोई भी नहीं
इंसान में शुद्ध तो कोई नहीं, लेकिन कौन कर सकता है, परमेश्वर। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम पहुंच गए हमारे लेसन के अंत में। कि इस वजह से परमेश्वर ने बुराई को अनुमति दी। किस वजह से? ताकि इनको मैं तजुर्बा दूं, इनको सिखाऊं। तो ये जो पैरों की चौकी, ये स्कूल में परमेश्वर शिक्षा दे रहा है सबको कि देखो बुराई का नतीजा क्या है, मृत्यु। अभी अच्छाई सिखाऊंगा, उसका नतीजा क्या है, जीवन। तो अब चुन लो तुम्हारे लिए क्या सही है। तो तब सब लोग अब जो परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर को जानेंगे भी और महिमा भी देंगे, समझ लेंगे परमेश्वर की योजना, समझ लेंगे कि सचमुच परमेश्वर तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य 5:13, जी ये भविष्यवाणी देख लो, ये है भविष्यवाणी जो अभी आप पढ़ने जा रहे हो।
फिर मैं ने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के
स्वर्ग में यानी दूत, पृथ्वी पर यानी मनुष्य जाति, और पृथ्वी के नीचे यानी जो कब्रों में थे वापस आ गए, क्या क्या बोलते सुना,
और समुद्र के सब सृजित वस्तुओं को,
हाँ,
और सब कुछ को जो उनमें है,
हाँ,
यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है,
हाँ,
उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे।
सब बोलेंगे वाह परमेश्वर, तेरा आदर तेरा महिमा सदा का है। क्या योजना बनाई, क्या तजुर्बा देने का तरीका दिया, कैसे हमें मृत्यु से छुड़ाया, कैसे हमें अच्छाई का स्वाद चखाया। वाह परमेश्वर, तेरे जैसा कौन परमेश्वर हो सकता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आओ हम परमेश्वर को महिमा और स्तुति देते हैं कि आज हमें वो प्रश्न का उत्तर मिला जो हर एक मन का प्रश्न है। आमीन।